जैसा कि सूरत का आगाज़ है, तो हम थोड़ी सी बातें हमेशा ही सूरत के आगाज़ से पहले उस सूरत के बारे में करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि ये सूरत कहाँ, किस माहौल में नाजिल हुई और इसके अंदर जो अहकामात हैं वो हमारे लिए क्या पैगाम रखते हैं। और किसी भी सूरत के उस मौके को जब वो नाजिल हुई, जिन हालात में हुई, उसको समझे बगैर उसके अंदर जितने भी अहकामात होते हैं हम उसको नहीं समझ सकते। और बहुत बड़ी वजह है आज के दौर में दीन को समझने के बावजूद भी दीन के ऊपर अमल ना कर सकने की, या इस्लाम की उन चीज़ों के ऊपर तनकीद करने की जो शुरू से ही मुत्तफिक अलह थी। और वो क्या कि हम ये नहीं समझ रहे होते कि ये आयतें किस माहौल में नाजिल हुई। तो सूरत नूर जो है ये तरतीब के अतबार से 24 24 नंबर की सूरत है। आप कह सकते हैं कि इससे पहले 23 सूरतें जो हैं वो गुजर चुकी हैं। अगर आप तरतीब से सुनते आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि सूरत अनफाल के बाद अब पहली मदनी सूरत आ रही है। अगर ये चीज़ आपके जहन में रहेगी तो आप इसके मजामीन को भी समझेंगी। इब्तदा में हमने जितनी भी सूरतें पढ़ी थी उसमें सूरत अनफाल तक कई मदनी सूरतें आई थी, लेकिन अनफाल से लेकर अभी तक 14 मक्की सूरतें हम पढ़ चुके हैं। और अगर वक्त हो तो पीछे मुड़ के देखें क्या क्या अल्लाह ताला ने हमें इन 14 सूरतों में पढ़ा दिया। कहीं हमने अलम तरा कैफ दरब अल्लाह मसलन कलीमतन वाली आयतें पढ़ी सूरत इब्राहिम के अंदर से, जिसमें ईमानियात सिखाई गई, रसालत, तौहीद, और कितना ही ज़्यादा हमने हशर नशर का जिक्र पढ़ा। गोया के 14 सूरतों में अल्लाह ताला ने मक्की सूरतों के तीन मज़मून, अकीदा अल्लाह ताला के बारे में, रसूल का मुकाम और आखरत जन्नत जहन्नम, खूब अच्छी तरह हमारे दिलों में रासिख कर दिया। अब उसके बाद सूरत नूर आ रही है। आप अगर अपने पढ़ने के वक्त को भी नोट करें, यानी मुसहफ को अगर आप खोलते हैं, तो उसके अंदर आपको यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगा। अब आप सोचिए कि जो बात आज हो रही है एक साल पहले नहीं की गई आपसे, ये तरतीब गौर कीजिएगा इस पर। कई लोग चाहते हैं कि बीच बीच में से सूरतें तोड़ के पढ़ा दी जाए, और अक्सर लोगों ने चूँकि सूरत नूर का नाम सुना होता है तो कहते हैं बस इस साल के समर कोर्स में अब सूरत नूर ही पढ़ा दें। इंतहाई गलत फैसला होगा, या फिर पढ़ाने वाला इस तरह पढ़ाए कि उससे पहले उनकी जहन साजी करे, पिछले सारे मजामीन को उनके साथ टच करे, फिर उनको इसके बारे में बताए। तो सूरत नूर के अंदर इसका नाम जो है वो आयत नंबर 35, अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्द, इससे माखूज है। और 64 64 आयतें हैं, और मैं कहती हूँ कि ये 64 बल्ब है, लाइट्स हैं, कुमकुमे हैं। हर आयत वाकई रोशनी का और नूर का मंबा है कि जिसके ऊपर अगर अमल किया जाए तो ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ आ सकती हैं। ये सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन सन 6 हिजरी में नाजिल हुई। इसमें एक वाक्य आता है जिसको वाक्य इफ़ कहते हैं, बहुत ही दिलसोज किस्म का वाक्य है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी पाक दामन औरत को भी लोगों ने ना छोड़ा, तो उन पर इल्ज़ाम लगाया। और ये वाक़या गज़वा बनू मुस्तलक में हुआ था, इसलिए अगर हम उसको देखते हैं, और वो गज़वा खंदक के करीब के ज़माने में थी, तो ये गज़वा 6 हिजरी में हुआ था, शाबान के महीने में। तो बहरहाल सारी बात का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह के नबी की नबवी ज़िंदगी के भी तकरीबन 15-16 साल गुज़र चुके थे। 13 साल मक्का के, और 4-5 साल ऊपर लगा लें तो 6 साल वो लगा लें, तकरीबन 17 साल गुज़र चुके थे वही का सिलसिला शुरू हुए जिब्राइल को आते हुए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को तौहीद का और दावत का पैगाम देते हुए। इस दौरान जो कुर्बानियाँ मिली, इस्लाम के रास्ते में लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने लोगों के दिलों की ज़मीन को नरम किया। फिर बीच में हिजरत की चोटें पड़ी कि जिससे रही सही दुनियादारी और दुनिया की मोहब्बतें भी निकल गईं। अब सहाबा कराम के दिल बिल्कुल एक ऐसे चिराग की तरह थे जिसको सिर्फ दिया सलाई दिखाने की देर थी। अब उनके अंदर ईमान भी आ चुका था और इस्लाम के अहकामात को कबूल करने का पूरे का पूरा, जिसको आप कह सकते हैं कि शऊर आ चुका था। ऐसे वक्त में ये सूरत नाजिल हुई, और अल्लाह सुबहाना ताला ने इस सूरत का आगाज़ बिल्कुल अनयूजुअल किया। जब हम सूरत शुरू करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। इस सूरत के अंदर जो बुनियादी मज़ामीन है उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है कि घर कैसे बचाया जाए। किसी भी सोसाइटी को अगर आपने तरक्की याफ्ता सोसाइटी बनाना है ना, तो आपको वहाँ के घरों को मुतमईन पुरसकून करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि घर उस ईंट की तरह, जो सीधी ईंट होगी तो इमारत सीधी बनेगी। और जिस सोसाइटी में सोशल सेटअप, फैमिली बैकग्राउंड ये टूट जाता है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो माशरे लोगों की नज़रों में सुपर पावर हों, वो सिविलाइज्ड हों, वो कुछ भी हों, वो असल में क्या होते हैं इस सूरत के दौरान हम देखते रहेंगे। और वो शहर जिसमें आज के कसीर मुसलमान भी मुबतला हैं, वो सारा शहर इंशाल्लाह बिल्कुल बातिल हो जाएगा कुरान पाक की इन आयात की रोशनी में, उन माशरों के चेहरों को देखने से कि जहाँ आज कितना अपसेटनेस है। तो पहला मज़मून है इसमें घर को कैसे बचाया जाए, घर का माहौल कैसे पाकीज़ा रखा जाए, शौहर बीवी का ताल्लुक कैसा हो, शादी का मकसद क्या है, बच्चे कैसे हों, और एक होम स्वीट होम का बेहतरीन नज़रिया दिया जाता है। और इस्लाम जो है ये असल में देखा जाए तो जिस टॉपिक को पसंद करता है ना वो इंसान है। हम पीछे दो बार पढ़ चुके हैं, अभी बिल्कुल पिछले ही सबक में सूरत मोमिनून में, बल्कि इससे भी पिछले लेसन में सेकंड लेसन, और इसी तरह सूरह हज में हम पढ़ चुके कि अल्लाह ताला कहते हैं फी ही ज़िक्रुकुम, इसमें तो तुम्हारा ज़िक्र है, तुम्हारी किताब है। तो ऐसे लगता है कि जैसे हर स्पीकर का एक पसंदीदा टॉपिक होता है ना, इस तरह कुरान चूँकि अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह ताला को बग़ैर किसी से कोई नस्बत ही हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला का फेवरेट टॉपिक इंसान है। पूरा कुरान असल में इंसान को जीना सिखाता है और जीने के बाद जाने की तैयारी करवाता है। तो अल्लाह ताला ये दिखाएंगे इस सूरत में कि एक घर कैसे होम में बदलता है। घर बनता है मिट्टी की दीवारों से, आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ईंटों से घर बनाते हैं, आप अमेरिका में जाते हैं तो शीट रॉक से घर बनते हैं, आप नॉर्वे में आते हैं तो लकड़ी से घर बनाते हैं, और चाहे आप उस पर सोने का पानी फेर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन याद रखिए कि वो कोई विला हो, कोई पैलेस हो, कोई कोठी हो, बंगला, वो घर नहीं है, वो मकान है। उस मकान को घर में जो चीज़ बदलती है ना, वो वहाँ रहने वाले हैं। और वो कैसे हैं, इसका ताल्लुक है कि उनके आपस में ताल्लुकात कैसे हैं। इस्लाम इंसान के घर को सच्ची खुशियाँ देना चाहता है, जैसे आप कह सकते हैं कि सच्ची मुसरतों के फूल खिलाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि बीवी है तो सही लेकिन नाम की, शौहर है लेकिन उसकी नज़रें कहीं बाहर रली हुई हैं, और बच्चे हैं लेकिन वो यतीमों की तरह पल रहे हैं, है तो सही माँ लेकिन वो माँ की गोद उनको नसीब ही नहीं है। आज इंसानियत ने जितने भी आसाइश और आराइश के इंतज़ाम कर लिए, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े खूबसूरत स्लोगन देके लोगों को दुनिया की चीज़ों की तरफ खींचा जा रहा है, लेकिन अगर आप उसके अंदर जाके देखें तो आपको सिसकती हुई इंसानियत दिखेगी, चीखें सुनाई देंगी आपको 6 दिन के बच्चों की, जिनकी माएँ उनको अपने हाथों से निकाल कर डे केयर्स में छोड़ कर दूसरों के बच्चों को पालने जा रही होती हैं। क्यों? इसलिए कि अपने बच्चे को पालूंगी तो कुछ भी नहीं मिलना, दूसरों के पालूंगी तो 7 डॉलर्स और क्रोन मिलेंगे। आज ये तोहफे इंसानियत को जो मिले, इससे इंसानियत के जो लहू टपक रहे हैं ना, इसी को हम चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं डिप्रेशन की सूरत में और कहीं परेशानियों की सूरत में। तो इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सबक में आती रहेंगी। अब इस सिलसिले को चलाने के लिए जो रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी वो ज़िना है, हम उस पर जब बात करेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे। तो दूसरा मेन टॉपिक जो आपको इस सूरत में दिखेगा वो ज़िना का है, और ज़िना भी असल में एक बहुत बड़ा नासूर है ना घरों को खुशगवार बनाने का। शौहर और बीवी दोनों में से कोई एक इस जुर्म का इर्तकाब करे, शादी से पहले लड़का लड़की कुछ कर चुके हों, सारी ज़िंदगी उसका गिल्ट नहीं जाता, फिर उसके ज़रिए में जो इलीगल बच्चे पैदा होते हैं वो माशरे के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बनते हैं, तो उसके लिए जो दूसरी चीज़ है वो ज़िना की आएगी। फिर उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर एक तोहमत लगी थी, वो अगला ही सबक है हमारा, सेकंड लेसन, उसी में हम तफसील से देखेंगे। और उसके बाद उस वाक्य से लेके आखिर तक जिना के सद्देबाब, प्रिकॉशंस। ला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसा सबीला। सूरत बनी इसराइल में ये आयतम पढ़ चुके कि जिना के करीब ना जाओ क्योंकि ये बुरा रास्ता है और ये बहुत ही बेहयाई की चीज़ है। तो उसमें फिर अल्लाह सुबहाना ताला ने घरों में आने के अंदाज़, दाखले की बातें, पर्दा, औरत की आवाज़, औरत का जेवर, उसकी खुशबू, मर्दों के लिए निगाहों का झुका होना, आने के वक्त, जाने के वक्त इजाज़त लेना, ये सारी चीज़ें तफसील से इसमें हम देखेंगे। और इस सूरत को पढ़ते हुए वाकई जो मेरे दिल की कैफियत होती है वो तो यही होती है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान बनाया। और सबसे बड़ी खूबसूरत जो आयत इस सूरत में हम पढ़ेंगे वो आयत 35 है, अल्लाहु नूरु समावाती वल अर्द, कि अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान का नूर है। और वो कैसे नूर है ये हम वही जाके देखेंगे। और बिल्कुल एंड पे आप देखेंगे तो आखिरी आयतों में अल्लाह ताला ने वादा किया है ईमान वालों से कि मैं तुम्हें दुनिया में भी खिलाफत दूंगा, तुम्हें बड़ा बनाऊंगा। शर्त क्या है कि सच्चा ईमान ले आओ। आज भी मुसलमान मुआशरे जो बज़ाहर मसाइल की तस्वीर बने हुए दिखते हैं, यकीन करें कि आज भी मुसलमान मुल्कों के मसाइल इतने बड़े नहीं हैं जितने तरक्की याफ्ता मुल्कों के मसाइल हैं। वहाँ का मसला तो रोटी है ना, मिल जाएगी, कोई भी डोनेट कर देगा, थोड़ी सी ज़रा कमर तोड़ेंगे, गंदम उगाएंगे, पक जाएगी। लेकिन बाहर की दुनिया का मसला रोटी पकाने वाली है। आज जो मसाइल वेस्ट को दरपेश हैं, अगर उसको सामने रखते हुए हम इस्लाम पर लगे हुए इल्ज़ाम का भी हल्का सा मुशाहदा करें, आप लोगों को मैं ज़्यादा नहीं इस चीज़ में उलझाऊंगी क्योंकि आप लोगों को शायद फिर बात लंबी लगे, लेकिन जो इस्लामी सज़ाएं उस पे बहुत हमले हुए हैं। तो आइए ज़रा सूरत शुरू करके फिर इन चीज़ों को साथ साथ लेंगे और अल्लाह ताला से अभी से ये दुआ कर लें कि अल्लाह तू हमें जो बात हम सुने और कहें उसको सही समझने की और आगे सही तरीके से पेश करने की तौफीक अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। और आज तो ये बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए मुझे वाकई महसूस हुआ कि अल्लाह के नाम के साथ जिसने सूरत नूर नाजिल की और हमें इतने प्यारे अहकामात देकर भटकने से बचा लिया, मुख्तलिफ दौर के अंदर तजुर्बात ही कर कर के इस दुनिया से जाने से बचा लिया, और ये नहीं किया कि हम दूसरों से पूछते रहें कि हमें क्या करना है और किस तरह से करना है और क्या मामला करना है। एक चीज़ और नोट कर लें कि कुरान पाक की 3 सूरतें ऐसी हैं जिनमें ख़वातीन के मसाइल पर खसूसी बात की गई है, जिसमें से एक सूरत हम पढ़ चुके हैं सूरत निसा, दूसरी अब हम पढ़ रहे हैं सूरत नूर, और तीसरी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो सूरत अल अहज़ाब में। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में अहले कूफा के नाम एक फरमान तहरीर किया, जैसे गवर्नमेंट का लेटर होता है, और उसमें कहा कि अल्लिमू निसाकुम सूरत नूर, अपनी औरतों को सूरत नूर सिखाया करो, पढ़ाया करो। आज पता नहीं कि हमारी औरतों का क्या हाल है। और वैसे तरतीब के अतबार से देखें तो कहते हैं कि सूरत हशर के बाद जो सूरत नाजिल हुई थी। चलिए देखते हैं, सूरत अनज़लनाहा व फ़रतनाहा व अनज़लना फ़ीहा आयातिम बय्यिनातिल लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक अज़ीमुश्शान सूरत है जो हमने नाजिल फरमाई है और हमने फ़र्ज़ किया है इसके अहकाम को, और हमने उतारी हैं इसमें रोशन आयतें। क्यों? ताकि चूमो, ताकि इसकी कस्में खाओ, ताकि इनके तावीज़ बनाओ, इसलिए कुरान उतारा है हमने? नहीं, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत कबूल करो। बड़ा ही गैर मामूली किस्म का आगाज़ है। तमहीद के बग़ैर बराह रास्त अल्लाह ताला ने अहकामात की बात कर दी। हमने नाजिल की है ये सूरत। हर हुक्म ही अहम है, लेकिन जब जिस हुक्म को अल्लाह कह दे कि अनज़लनाहा, हमने इसको नाजिल किया है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो क्या हालात होंगे कि जो इस सूरत के अंदर बयान किए गए होंगे। और लफ्ज़ सूरत जो है ना, सीन वाव रा इसका रूट होता है। सूर कहते हैं दीवार को, तो सूरत क्या है? चार दीवारी। हर सूरत एक चार दीवारी के बीच में लिपटी होती है, तभी तो हमें पता चलता है कि सूरत अल मोमिनून ख़त्म हुई है और अब सूरत नूर शुरू हो गई। तो जिस तरह बाउंड्री वॉल के बाहर कोई चीज़ नहीं जाती, इसी तरह हर सूरत का एक अपना मिजाज है और इसके अंदर ये चीज़ें हमें मिलती हैं। अनजल नाहा, हमने नाजिल किया इसको। क्या बाकी कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल नहीं किया? हकीकतन किया है, लेकिन यहाँ उसकी बात क्यों की गई? ताकि याद दहानी हो कि इसमें आने वाले अहकामात ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स नहीं है, ये गवर्नर के अहकामात नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का कोई खिताब नहीं है कौम से कि कल से इतना टैक्स लग रहा है और अगले ही दिन लोग शोर मचा के फिर उस टैक्स को कम करें। सूरतुन अनज़लनाहा, हमने नाजिल किया है। बात करो हमसे, जिसको एतराज़ है शौक से आए, हम जवाब देंगे। देखिए, जब लोग नहीं मानते ना, तो जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि उनको मेरे पास भेज दो। जो बच्चे टीचर्स की नहीं सुनते, फिर उनको प्रिंसिपल के ऑफिस में भेजा जाता है ना, उसी सोच को यहाँ रख के देख लीजिए कि सूरत का आगाज़ बड़े जलाल और जोश के साथ हो रहा है। इससे पता चलता है कि सूरत के अंदर आने वाली चीज़ें अपने मजामीन और मतलब के लिहाज से बड़ी अहम है। एक एक लफ्ज़ अल्लाह ताला की जलालत शान और किबरियाई नुमाया हो रही है, और पढ़ने और सुनने से दिल और दिमाग पर हैबत तारी हो जाती है। ये एक ऐसी सूरत है जिसको हमने नाजिल किया। वह फ़र्द ना हा, और हमने उतारा, हमने फ़र्ज़ किया, ये भी बात सुन लीजिए, फ़र्ज़ किया है, यानी इसके अहकाम कोई ऑप्शनल नहीं है। इसमें जो बातें सुनोगे, ये चॉइस नहीं है, ओके यू वॉन्ट टू डू इट, डू इट, फ़र्ज़ है। ये कतियत के मानों में आता है फ़र्ज़। फ़रादा का जो लफ्ज़ है ना, फ़रादवात, इसका लफ्ज़ी मन होता है कता, काट देना। जैसे कहते हैं ना, कट, बात ख़त्म, चुप, आगे नहीं बोलना। तो फ़र्ज़ भी ये, हमने कह दिया डोंट टॉक अबाउट दिस, हो गया हुक्म, कलम टूट गया, फैसला सादर हो गया। और इसी तरह फ़र्ज़ की फ़र्ज़ियत जब तक अदा ना करे, वो चीज़ हमारे लिए एक वबाल रहती है। फिर दोबारा कहा, वह अनज़लना फ़ीहा आयातिम बैजीनात, हमने इसमें रोशन आयतें उतारी। कितना खूबसूरत जुमला, इस लफ्ज़ को हाईलाइट करके लिख लीजिए कि अब इस सूरत को पढ़ने के बाद कोई ये तो नहीं कह सकता कि समझ नहीं आती अल्लाह क्या चाहता है। पता नहीं हिजाब के क्या मामले हैं, पता नहीं पर्दा है कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को सारा दीन समझ आ जाता है, उनको पर्दा नहीं समझ आता। क्योंकि अकल पे पर्दा पड़ जाए तो फिर जाहिर से क्या समझ आए। अल्लाह ताला कह रहे हैं, हमने तुम्हें कोई गुमगु की कैफियत पे नहीं छोड़ा। आयातिम बैयिनात, क्लियर साइंस है। क्या आप किसी हाकिम के बारे में सोच सकते हैं कि हुक्म भी दे और उसको खुद ही ना पता हो? कर लो तो ठीक है, हुक्म है तो कर लो, दे दो टैक्स ठीक है, नहीं देते तो भी ठीक है। दो टोक बातें होती है ना, और जिसको समझ नहीं आएगी लोग फौरन पूछ लेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं बिल्कुल यही अंदाज़ है इधर, कि हमने इसमें जो आयतें उतारी हैं ये बिल्कुल क्लियर हैं। और अल्लाह के नबी की वो बात याद आ गई कि आपने फरमाया कि लोगो, मैं तुम्हें एक ऐसे दीन पर छोड़ के जा रहा हूँ कि लैलुहा कनहारिहा, कि जिसकी रातें उसकी सुबहों की तरह रोशन है। कोई हैंकी पैंकी दीन नहीं मिला, चलो उससे पूछ लो। आज एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी लगता है बाज़ दफ़ा दीनदारों के तरफ से भी, यानी वो लोग जो दुनियादार हैं उनकी तो हम बात ही नहीं करते ना, लेकिन बाज़ लोग दीन की बात भी करते हैं तो कहते हैं पता नहीं अब क्या ठीक है क्या गलत है, चलो किसी एक इंसान की बात के मान लो, किसी इमाम की बात और उसने जो कहा उसको मान लो। क्या अल्लाह के नबी ने हमें मुबहम दीन पर छोड़ा? नहीं, आयातिम बैयिनात। सहाबी कहते हैं कि अगर हमारे सामने से कोई परिंदा भी गुजरे तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि हमारे साहिब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसके भी बारे में बता दिया। अल्लाह के नबी की तो आदत होती थी हर मौजू पे बात करते थे, पढ़ने की, पढ़ाने की, तिजारत की, औरत होते तो शायद खाने पीने की तरकीबें भी बता देते, कपड़े सीने की भी बातें कर देते। क्यों आई हैं ये आयात बैयिनात? लअल्लकुम तज़क्करून, शायद के नसीहत पालो, शायद के तुम्हें होश आ जाए, ताकि तुम बच जाओ गलतियाँ करने से, दूसरों के पीछे एड़ियाँ उछाल उछाल के खड़े होने से बच जाओ। तुम्हारा ही फ़ायदा है, तुम बचोगे और किसी का कुछ नहीं, सारा फ़ायदा तुम्हारा है, अब मानो कि ना मानो। यहाँ बता दिया कि इस सूरत के अंदर जो अहकामात हैं ये कोई मशवरा नहीं है, कोई मेन्यू कार्ड नहीं पेश किया जा रहा। यू वॉन्ट टू डू इट, ओके, क्या पसंद करेंगे आप? क्या खाना चाहेंगे, क्या अहकामात लेंगे, क्या नहीं, बल्कि हर चीज़ खोल के बयान कर दी। चले, ये तो तमहीद थी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तमहीद थी।